नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तीसरे तिमाही की बिक्री तथा मुनाफे में गिरावट के बाद लागत कम करने के लिए दुनिया भर में 14,000 कर्मचारियों या अपने कार्यबल में 16% तक कटौती करने की योजना बना रही है। कंपनी जनवरी दिसंबर के वित्त वर्ष का अनुसरण करती है। कंपनी ने कहा कि इस कदम का मकसद बाजार की मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए उसके लागत आधार को कम करना है और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। नोकिया की ओर से जारी बयान के अनुसार कंपनी का मकसद 2026 के अंत तक अपने लागत आधार में 80 करोड़ यूरो से 1.2 अरब यूरो के बीच कमी लाना है। इस कदम से कंपनी के कर्मचारियों की संख्या घटकर 72,000 और 77,000 के बीच रह जाएगी, जो अभी 86,000 है। राजस्व के हिसाब से कंपनी की सबसे बड़ी इकाई मोबाइल नेटवर्क कारोबार की आमदनी 24% घटकर 2.16 अरब यूरो रह गई। साउथ इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 23% की बढ़ोतरी के साथ 275 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 223 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 2,485 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,995 करोड़ रुपए थी। बैंक की ब्याज से आय बढ़कर 2,129 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,740 करोड़ रुपए रही थी। इसके अलावा बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां सितंबर अंत तक घटकर कुल कर्ज का 4.96% रह गई। सितंबर 2022 में ये 5.67% थी। बैंक का शुद्ध NAP भी घटकर 1.70% रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.51% था। सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे IT हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए थकाऊ लाइसेंसिंग मानदंडों में बदलाव किया। अब ऐसे उत्पादों के आयातकों के लिए एक ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली स्थापित की गई। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बृहस्पतिवार यहां संवाददाताओं से कहा, नई लाइसेंसिंग या मंजूरी व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से इन उत्पादों के आयात की निगरानी करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे विश्वसनीय स्रोतों से आ रहे हैं। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने कहा कि आयात पर अंकुश को लेकर हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में कुछ बदलाव किए गए और आयातकों के लिए एंड टू एंड ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई। सारंगी ने ये कहा कि प्रणाली आयातकों के लिए बिना कहीं जाए और बिना संपर्क विवरण भरने की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खाड़ी देशों की यात्रा में अब तक 15,475 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार धामी की उपस्थिति में बुधवार को अबू धाबी में 3,550 करोड़ रुपए के सहमति ज्ञापन पर दस्तखत हुए। अब तक मुख्यमंत्री की खाड़ी देशों की यात्रा में 15,475 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए धामी दुबई और अबू धाबी की यात्रा पर हैं। धामी के नेतृत्व में गए राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग घरानों को दिसंबर में देहरादून में होने वाले सम्मेलन में आने का न्योता दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में समुद्री क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने की जरूरत बताई है। उन्होंने इसके लिए क्षमता और कानूनी प्रणाली के विकास का आह्वान किया है। यहां 3 दिन के वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन वित्त मंत्री ने कहा कि लंदन या सिंगापुर या दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों में कई भारतीय काम कर रहे हैं। वे सभी वहां के वरिष्ठ वकीलों की मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी मामले की अगुवाई नहीं कर रहे। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। सीतारमण ने कहा, हमें मध्यस्थता प्रक्रियाओं तथा कानूनों को सुधारने व मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप बन सकें। सीतारमण ने कहा, जब हमने इसके लिए एक प्रणाली विकसित कर ली है, तो हमारे पास एक मध्यस्थता केंद्र भी हो सकता है। समुद्री क्षेत्र के वित्त पोषण में सुधार की आवश्यकता पर उन्होंने स्वीकार किया कि एक मजबूत बही खाते के बावजूद बैंक इस क्षेत्र के वित्त पोषण के बारे में बहुत उत्साहित नहीं है। गूगल के स्वामित्व वाला YouTube विश्वसनीय समाचार स्रोतों से प्राप्त वीडियो को ही वॉच पेज पर सूचीबद्ध करेगा। ये भारत में आने वाले महीनों में उपलब्ध होगा, कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कही। YouTube इंडिया की सरकारी मामलों व सार्वजनिक नीति की प्रमुख मीरा चट ने यहाँ गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा, आज मैं समाचारों के लिए वॉच पेज पेश करते हुए खुश हूँ। वॉच पेज पर विश्वसनीय स्रोतों से उपलब्ध वीडियो ही सूचीबद्ध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वॉच पेज भारत में आने वाले महीनों में उपलब्ध होगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि सरकार ने यूट्यूब को भेजे अपने संचार में फर्जी समाचार को परिभाषित नहीं किया है। चट ने कहा कि मंच ने अप्रैल जून 2023 के बीच भारत में 20 लाख से अधिक वीडियो हटाए जो नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।